किताब उन निकाह के शुरू में चंद बातें लिख लीजिए भाई, लिखिए, ऊपर उनवान दे दीजिए किताब उन निकाह, किताब उन निकाह भाई, जल्दी जल्दी लिखिए, ये जरा लंबी बहस है जी। ये उनवान आपने दे दिया किताब उन निकाह, इसके नीचे एक छोटा उनवान दीजिए आप, निकाह का माना, निकाह का माना, निकाह का माना लिखिए भाई आगे अलग सतर में। अरबी जुबान में, अरबी जुबान में निकाह वती और आकद, वती वो त्वा है भाई, त्वाजवा और फिर या है, अरबी जुबान में निकाह वती और आकद यानी ईजाब कबूल को कहते हैं, यानी ईजाब कबूल को कहते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि निकाह के ये दोनों माना, कि निकाह के ये दोनों माना हकीकी हैं, हकीकी हैं। और बाज़ उलमा फरमाते हैं, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये दोनों माना हकीकी नहीं हैं, कि ये दोनों माना हकीकी नहीं हैं, बल्कि एक माना हकीकी है, बल्कि एक माना हकीकी है और दूसरा माना मजाजी है, और दूसरा माना मजाजी है। आगे अलग सतर में लिखिए, किसी लफ्ज को जिस माना के लिए, किसी लफ्ज को जिस माना के लिए वज़ा और मुकर्रर किया जाए, वज़ा वो ज़ाद है और आइन है, वज़ा, किसी लफ्ज को जिस माना के लिए वज़ा और मुकर्रर किया जाए, वज़ा और मुकर्रर किया जाए, भाई वज़ा का माना है मुकर्रर करना, इसीलिए मैंने साथ मुकर्रर का लफ्ज भी लिखवा दिया। किसी लफ्ज को जिस माना के लिए वज़ा और मुकर्रर किया जाए वो उस लफ्ज का हकीकी माना कहलाता है, वो उस लफ्ज का, वो उस लफ्ज का हकीकी माना कहलाता है, और फिर उस लफ्ज को, और फिर उस लफ्ज को किसी दूसरे माना के लिए, किसी दूसरे माना के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो उसका मजाजी माना कहलाता है, तो वो उसका मजाजी माना कहलाता है। जैसे लफ्ज़े शेर, जैसे लफ्ज़े शेर उर्दू जुबान में, उर्दू जुबान में एक जंगली दरिंदे को कहते हैं, एक जंगली दरिंदे को कहते हैं, अलबत्ता शेर का लफ्ज, अलबत्ता शेर का लफ्ज कभी कभार, कभी कभार बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जंगली दरिंदा, तो जंगली दरिंदा इस लफ्ज़े शेर का, इस लफ्ज़े शेर का हकीकी माना है, हकीकी माना है, और बहादुर आदमी इसका मजाजी माना है, और बहादुर आदमी इसका मजाजी माना है। यहां तक लिख लिया। देखो निकाह के बारे में उलमा दो माना जिक्र करते हैं, एक वती यानी सोहबत करना, खावंद का बीवी से सोहबत करना, और एक आकद भाई, आकद दो आदमियों के दरमियान जो मामला हो उसको आकद कहते हैं। जैसे आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने यह चीज आपसे खरीद ली, और वो कहता है कि यह चीज मैंने आपको बेच दी, या वो कहता है मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। तो देखो एक ईजाब हुआ और एक कबूल हुआ। तो ये जो दो आदमियों के दरमियान जो मामला हो उसको आकद कहा जाता है, और इसके अंदर जो पहले बात करे उसको ईजाब कहते हैं और दूसरे को कबूल कहते हैं। मसलन मैंने आपसे कलम खरीदना है तो मैं आपसे कहता हूं कि ये कलम मैंने आपसे 100 रुपए में खरीद लिया, या ये मैं कलम आपसे 100 रुपए में खरीदता हूं, आप कहते हैं मुझे मंजूर है। तो जो पहले कलाम करे उसको क्या कहेंगे? ईजाब। तो जो मैंने बात की कि ये कलम मैं आपसे 100 रुपए में खरीदता हूं, ये ईजाब कहलाएगा, और जो दूसरे ने बात की वो कबूल कहलाएगा। तो जो भी पहले बात करे उसको क्या कहते हैं? ईजाब। चाहे खरीदार पहले बात करे, चाहे बेचने वाला पहले बात करे, और दूसरे नंबर पर जो बात करे उसको कबूल कहते हैं। तो ये आकद कहलाता है दो आदमियों के दरमियान मामला। इसी तरह निकाह भी ईजाब और कबूल का नाम है, ईजाब और कबूल का नाम है। खावंद कहता है कि मैंने इससे निकाह कर लिया, और वो औरत या उसके वकील क्या कहता है कि हमें कबूल है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये मामला जो उस शख्स और औरत के दरमियान हुआ ये अक्द निकाह है भाई। तो निकाह इस ईजाब कबूल का नाम है। किसका नाम है? तो निकाह के दो माना जिक्र होते हैं अरबी जुबान में। निकाह के दो माना उलमा जिक्र फरमाते हैं, एक है वती यानी सोहबत करना, और एक है आकद यानी वो जो ईजाब और कबूल हो रहा है। अब क्या ये दोनों माना हकीकी हैं या इनमें से एक माना हकीकी है और एक मजाजी है? तो बाज उलमा फरमाते हैं ये दोनों इसके हकीकी माना है, यानी इस लफ्ज को, लफ्ज निकाह को इन दोनों मानी के लिए अलग अलग वजा किया गया। निकाह का माना वती भी और निकाह का माना आकद भी, दोनों के लिए इसको अलग अलग वजा किया गया। वजा का माना होता है मुकरर करना। जैसे देखो कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन उसका नाम जैद रख देते हैं, तो वालिदैन ने उसके लिए क्या नाम मुकरर किया? जैद। इसी तरह निकाह किसके लिए मुकरर किया? निकाह का लफ्ज अरबी जुबान में वती के लिए अलग मुकरर किया कि निकाह का माना वती है, और इसी तरह फिर आकद के लिए भी अलग वजा किया कि इसका माना आकद भी है। तो दोनों इसके हकीकी माना हैं, और जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि दोनों माना हकीकी नहीं है, एक माना हकीकी है और एक माना मजाजी है। हकीकी माना वो जिसके लिए किसी लफ्ज को वजा किया जाए, मुकरर किया जाए, और मजाजी माना वो जिसके लिए उस लफ्ज को वजा नहीं किया गया लेकिन उसमें उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे शेर, शेर उर्दू जुबान में शेर एक जंगली दरिंदे का नाम है भाई, एक हैवान है चीरने फाड़ने वाला, चिड़ियाघर में आपने देखा होगा, और इसको क्या कहते हैं उर्दू में? शेर। तो शेर का लफ्ज इस जंगली दरिंदे के लिए वजा है, मुकर्रर है, तो ये इसका हकीकी माना हुआ। लेकिन बहादुर आदमी के लिए भी कभी शेर का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई आपका साथी आता है बड़ा बहादुर होता है तो आप कहते हैं देखो शेर आ गया भाई, शेर आ गया। तो माना क्या है? बहादुर आदमी आ गया। तो शेर इसका हकीकी माना हुआ और बहादुर आदमी इसका मजाजी माना हुआ। तो इसी तरह उलमा भी फरमाते हैं, बास फरमाते हैं कि ये वती और आकद दोनों इसके हकीकी माना नहीं है, बल्कि वती हकीकी माना है और आकद क्या है? इसका मजाजी माना है। जबकि बाज उलमा इसके बराक्स फरमाते हैं, वो कहते हैं आकद इसका हकीकी माना है और वती क्या है? इसका मजाजी माना है। बात समझ में आ गई? अब आगे लिखिए भाई अलग सतर में। चुनांचे बाज उलमा फरमाते हैं, कि लफ्ज निकाह हकीकत है वती में, लफ्ज निकाह हकीकत है वती में और मजाज है अकद में, यानी वती इसका हकीकी माना है, और आकद इसका मजाजी माना, बाज़ उलमा इसके बरअक्स फरमाते हैं, कि लफ्ज़ निकाह का हकीकी माना आकद है, कि लफ्ज निकाह का हकीकी माना आकद है, यानी ईजाबो कबूल, यानी मियां बीवी का ईजाबो कबूल, और मजाजी माना वती है, और मजाजी माना वती है। वती का माना है, वती का माना है मर्द का औरत से, मर्द का औरत से मुबाशरत करना। मुबाशरत भाई मीम बा अलिफ शीन रा और लंबी ता है भाई, दो नुक्तों वाली। मर्द का औरत से मुबाशरत करना और सोहबत करना, मुबाशरत करना और सोहबत करना, मुबाशरत और सोहबत दोनों का एक माना है भाई, मैंने इसलिए दोनों लफ्ज लिखवा दिए। आगे अलग सतर में लिखिए भाई। बाज उलमा के नजदीक निकाह के ये दोनों माना हकीकी हैं, निकाह के ये दोनों माना हकीकी हैं, यानी लफ्ज निकाह मुश्तरके लफ्जी है, मुश्तरके लफ्जी है इन दोनों माना के लिए। मुश्तरके लफ्जी होने का मतलब यह है, मुश्तरके लफ्जी होने का मतलब यह है कि लफ्ज निकाह को दोनों माना यानी वती और अकद के लिए अलग अलग वजा किया गया है। वजा किया गया है, लिहाजा ये दोनों इसके हकीकी माना हैं, लिहाजा ये दोनों इसके हकीकी माना हैं। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। देखिए बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं, निकाह का हकीकी माना है वती, और आकद जो है वो इसका मजाजी माना है, हकीकी माना नहीं, उस आकद के लिए ये वजा नहीं है। जबकि बाज़ उलमा इसके बरक्स फरमाते हैं कि आकद इसका हकीकी माना है, और वती के लिए जब ये इस्तेमाल हो तो ये इसका मजाजी माना है। जबकि बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं कि ये दोनों इसके हकीकी माना हैं, यानी लफ्ज़ निकाह को इन दोनों माना के लिए अलग अलग वजा किया गया है। और आप जानते हैं जब एक लफ्ज के कई माना हो तो उसको मुश्तरक कहते हैं। आप उसूलु शाशी वगैरह में पढ़ चुके हैं भाई, मुश्तरक किसे कहते हैं, एक लफ्ज जिसके कई माना हो, यानी दो या दो से ज्यादा माना हो। जैसे वहां मिसाल है, आयन का लफ्ज जो है सोने को भी कहते हैं सोना चांदी, और जासूस को भी कहते हैं, आंख को भी कहते हैं, घुटने को भी कहते हैं, कई मानी हैं इसके। बल्कि बाज़ उलमा ने तो इसके 70 के लगभग मानी जिक्र किए हैं। तो बहरहाल बस दो माना या ज्यादा हो तो वह लफ्ज मुश्तरक कहलाता है। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यह लफ्ज निकाह भी मुश्तरक है भाई। आगे लिखिए भाई अलग सतर में जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि लफ्ज निकाह मुश्तरके मानवी है, कि लफ्ज निकाह मुश्तरके मानवी है वती और अकद के लिए क्योंकि निकाह का हकीकी माना है जम मुशई इलशई, जम जाद और मीम मुशद्दद है, जम अशई अशई इला इला अशई, जम मुशई इलशई भाई, यानी एक चीज को, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना और जोड़ना, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना और जोड़ना, तो ये है निकाह का हकीकी माना, तो ये है निकाह का हकीकी माना। और ये माना और मफहूम, और ये माना और मफहूम सादिक आता है, सादिक स्वाद के साथ है और काफ दो नुक्तों वाला है, ये माना और मफहूम सादिक आता है आकद पर भी और वती पर भी, आकद पर भी और वती पर भी। आगे लिखिए, आकद में भी, आकद में भी एक मर्द और औरत को मिला दिया जाता है, एक मर्द और औरत को मिला दिया जाता है और इनमें जोड़ पैदा कर दिया जाता है, और इनमें जोड़ पैदा कर दिया जाता है, और फिर ये मियां बीवी कहलाते हैं, और फिर ये मियां बीवी कहलाते हैं। इसी तरह वती में भी, इसी तरह वती में भी मिलाने का माना मौजूद है, इसी तरह वती में भी मिलाने का माना मौजूद है कि एक शर्मगाह को, कि एक शर्मगाह को मिलाया जाता है, कि एक शर्मगाह को मिलाया जाता है दूसरी शर्मगाह के साथ, दूसरी शर्मगाह के साथ। लिख लिया। तो देखो, एक लफ्ज के कई माना हो तो इसको मुश्तरके लफ्जी कहते हैं, जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि निकाह मुश्तरके लफ्जी नहीं है बल्कि मुश्तरके मानवी है, यानी माना के एतबार से यह वती पर भी सादिक आता है और अकद पर भी सादिक आता है। इसका अपना माना वती भी नहीं, इसका अपना माना अकद भी नहीं, इसका अपना माना है जम मुशई इलशई, एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना भाई, और ये एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना, ये माना सादिक आता है वती पर भी, उसमें भी मिलाना है एक शर्मगाह का दूसरी शर्मगाह के साथ, और ये माना सादिक आता है आकद पर भी कि आकद में भी एक मर्द और औरत को मिला दिया जाता है और फिर वो मियां बीवी कहलाते हैं। आकद नहीं था तो वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, आकद हुआ तो अब क्या है, एक दूसरे के लिए मियां बीवी हैं, उनमें जोड़ा गया। तो बाज उलमा इसको मुश्तरक मानवी कहते हैं, ये लफ्ज़ निकाह को बाज मुश्तरक लफ्जी और बाज मुश्तरक मानवी कहते हैं भाई। आगे लिखिए भाई, अलग सतर में, अलग सतर शामी वगैरह में है, शामी वगैरह में है, अन्निकाह लुगतन, अन्निकाह लुगतन, लुगतन ये ता गोलता है और इस पर दो जबर हैं। अन्निकाह लुगतन हकीकतुन फिल वत्ये, हकीकतुन फिल वत्ये, मजाजुन फिल अक्दी, मजाजुन फी अल अक्दी, वकील बिल अक्सी, वकील बिल अक्सी, व नसबहुल उसूलियून, व नसबहु अल उसूलियून, उसूली स्वाद के साथ है भाई, व नसबहु अल उसूलियून इलशाफिय रहिमहुल्लाहु ताला, इलशाफिय रहिमहुल्लाहु ताला। वकीला मुश्तरकुन लफ्जियुन, वकीला मुश्तरकुन लफ्जियुन, वकीला मौजूउन, वकीला मौजूउन। मौजू ज़ाद है दरमियान में भाई, मौजूउन लिज़म्मी, दो लाम हैं फिर ज़ाद है और मीम मुशद्दद है, लिज़म्मी। अस्सादिकी अस्सादिकी, सौद के साथ है सादिक और काफ दो नुक्तों वाला है। अस्सादिकी अला अला अलअक्दी अलअक्दी वलवत्ये वलवत्ये, लिख लिया। ये अरबी इबारत जरा दोबारा सुन लीजिए। अन्निकाहु लुगतन हकीकतुन फिल वत्ये मजाजुन फिल अक्दी वकील बिल अक्सी व नसबहुल उसूलियून इला शाफिई रहिमहुल्लाहु ताला वकील मुश्तरकुन लफ्जियुन وقيل موضوع للضم الصادق على العقد والوطي। अब इसका माना भी समझ लें, माना आसान है। अन निकाह लुगतन, निकाह जो है लुगतन यानी अरबी जुबान के एतबार से, हकीकतुन फिल वती, वती के अंदर क्या है, हकीकत है। मजाजुन फिल अकदी, और आकद के बारे में मजाज है। वकील बिल अक्सी, और बाज उलमा ने इसका बराक्स जिक्र किया है कि आकद में हकीकत है और वती में मजाज है। वह नसबहुल उसूलियून इला शाफिई रहमहुल्ला, और उलमाए उसूल ने यानी उलमाए उसूल फिका ने निस्बत की है इस कौल की इमाम शाफी रहमहुल्ला की तरफ। किसकी तरफ? कि इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि आकद इसका हकीकी माना है और वती इसका मजाजी माना, यह जो दूसरा कौल जिक्र हो रहा है इबारत में। वकील मुश्तरकुन लफ्जियुन, और बाज उलमा क्या कहते हैं, ये निकाह मुश्तरक लफ्जी है आकद और वती में। वकील मौजूउन लिज़म सादिकी अला अल-अक़्दि वल-वती, और जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि ये वजा किया गया है लिज़म्मी, मिलाने के लिए, यानी इसका हकीकी माना क्या है, मिलाना है। अस-सादिकी अला अल-अक़्दि वल-वती, और ये मिलाना सादिक आता है आकद पर भी और वती पर भी, यानी ये मुश्तरक मानवी है। बात समझ में आ गई? तो देखो एक डेढ़ सतर में खुलासा कलाम आपके सामने आ गया भाई, शामी की इबारत भाई। आगे अलग सतर में लिखिए भाई, ये तो निकाह का लुगवी माना बयान हुआ, ये तो निकाह का लुगवी माना बयान हुआ, जबकि निकाह का शरई और इस्तिलाही माना, शरई और इस्तिलाही, इस्तिलाही शुरू में अलिफ है, स्वाद है और फिर त्वा है भाई, त्वाज़वा। जबकि निकाह का शरई और इस्तिलाही माना और तारीफ ये है, और तारीफ ये है। बात समझ में आ रही है? ये तारीफ क्या है, ये उस लफ्ज का माना ही तो बयान किया जाता है। जब किसी चीज की तारीफ की जाती है तो उसका माना बयान किया जाता है, उसकी पहचान करवाई जाती है। तो क्या लिखा आपने, जबकि निकाह का शरई और इस्तिलाही माना और तारीफ ये है। आगे लिखिए, अन निकाह हुआ अक्दुन, अन निकाह हुआ अक्दुन युफीदु मिल्क अल मुतअति, मिल्क मीम लाम और काफ छोटा है भाई, मिल्क अल मुतअति, मीम है ता है दो नुक्तों वाली, आइन है और गोलता है, मिल्क अल मुतअति। कसदन, कसदन काफ दो नुक्तों वाला है, स्वाद है भाई, कसदन दाल अलिफ है भाई, दाल पर दो जबरें डालेंगे, कसदन लिख लिया। ये तारीख मुकम्मल हुई निकाह की भाई। फिर सुन लीजिए, अन निकाह हुआ अक्दुन युफीदु मिल्कल मुतअति कसदन, अच्छा आगे तफसील भी आ रही है लेकिन पहले इसको समझ लें तारीफ को। भाई इधर देखिए, निकाह की एक तो लुगवी माना बयान किया, लुगवी माना यानी अरबी जुबान में निकाह का क्या माना है बतलाया कि बाज उलमा फरमाते हैं कि ये वकी इसका माना है और बाज क्या कहते हैं आकद है और बाज दोनों को जिक्र करते हैं और बाज कहते हैं इसका माना मिलाना है भाई और ये दोनों पर सादिक आता है। तफसील पीछे बयान हो गई भाई। जबकि इस्तिलाह शरीयत में और फुकहा के नजदीक निकाह किसे कहते हैं ये तारीफ अब आ गई। अन निकाह हुआ आकदुन, निकाह ऐसा आकद है युफीद मिलकल मुताती, मुता का माना है फायदा उठाना नफा उठाना, युफीद मिलकल मुताती जो नफा उठाने के की मिल्कियत का फायदा दे कसदन इरादे के साथ, यानी ये जो नफा उठाना मकसूद हो बिल इरादा हो। तवज्जो है भाई, देखो जब निकाह हो गया तो खावंद के लिए बीवी से नफा उठाना उससे सोहबत करना उससे लज्जत उठाना उसके लिए जायज हो जाता है। पहले दोनों एक दूसरे के लिए हराम थे लेकिन अल्लाह की नेमत कि अब वही औरत जब निकाह कर लिया अब उसके लिए क्या हो गई हलाल हो गई और अब उनका आपस में बैठकर बातें करना और आपस में हंसी दिल लगी करना ये सब इस पर अल्लाह उसको अजर और सवाब नसीब फरमाते हैं कि वो हराम जगह को छोड़कर हलाल जगह पर मशगूल है भाई। तो ये है निकाह भाई। निकाह किस चीज का फायदा देता है मिलके मुता, एक होती है मिलके रकबी, रकबा किसको कहते हैं गर्दन को, और मिलके रकबी, रकबा इंसान का एक जुज है तो यहां रकबा बोलकर यानी जुज बोलकर कुल मुराद है। जब इंसान किसी गुलाम को खरीदता है या बांदी को खरीदता है तो क्या कहते हैं इसको मिलके रकबी हासिल हो गई, क्या हासिल हुई। तो क्या माना वो सिर्फ गर्दन का मालिक है या पूरे गुलाम या पूरी बांदी का मालिक बन जाता है, पूरे गुलाम का मालिक बन गया। तो जुज बोलकर कुल मुराद है कि पूरी, यानी यूं कहो रकबा बोलकर उस गुलाम या बांदी की जात मुराद होती है तो वो उस पूरी जात का मालिक बन जाता है। और आप जानते हैं कि आजकल तो बांदियां नहीं लेकिन कदीम जमाने में बांदियां होती थी और जो शख्स खरीदता था वो उसका मालिक बन जाता था उसकी जात का, और आका के लिए अपनी बांदी से सोहबत करना जायज है भाई। आका के लिए अपनी बांदी से सोहबत करना जायज है भाई। तो देखो जब कोई शख्स बांदी को खरीदेगा तो मिलके मुता हासिल होगा या नहीं। मिलके मुता क्या माना, नफा उठाने का मालिक है, उसे नफा उठा सकता है उसे सोहबत कर सकता है। तो जब बांदी को खरीदेगा तो क्या हासिल होगा मिलके मुता। तो देखो बांदी को खरीदते हुए भी मिलके मुता हासिल होता है लेकिन उस खरीदने को कोई निकाह नहीं कहता कि इसने बांदी से निकाह कर लिया है, बल्कि क्या कहते हैं इसने बांदी को खरीदा है भाई। तवज्जो है जी। तो वहां पर भी मिलके मुता हासिल हो रहा है और निकाह के अंदर भी मिलके मुता हासिल हो रहा है, लेकिन ये जो कसदन की कैद लगाई ना तारीफ में कसदन, इसके जरिए उस बांदी की बैउ शिरा को निकाल दिया। किसको निकाल दिया, बांदी की बैउ शिरा को निकाल दिया, क्योंकि बांदी को खरीदेगा तो मिलके मुता आएगा या नहीं, मिलके मुता वहां भी आएगा, लेकिन क्या वहां मिलके मुता मकसूद होता है या मिलके रकबी मकसूद होती है। वहां असल में मिलके रकबी मकसूद होती है कि मैं इस बांदी का मालिक बन जाऊं, और जब मालिक बन जाएगा तो फिर मिलके मुता भी उसके लिए उसको हासिल हो जाएगा। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है। तो कसदन की कैद के जरिए किसको निकाला, बांदी की बैवशिरा को, वरना यह तारीफ उस पर भी एक सादिक आ रही थी। एक आदमी बांदी खरीदता है तो मिलके मुता हासिल हुआ या नहीं, और बांदी को खरीद रहा है, खरीदना भी क्या है आकद है या नहीं। तो देखो हुआ आकदुन, ये बांदी को खरीदना ऐसा आकद है युफीद मिलकल मुताती जो किस चीज का फायदा दे रहा है मिलके मुता का, इसको भी क्या कहना चाहिए निकाह कहना चाहिए, लेकिन क्या कहा आगे कसदन कि वो मिलके मुता मकसूद हो उस आकद के जरिए और कोई चीज मकसूद न हो, तो इस कसदन की कैद के जरिए बांदी की बैशिरा खारिज हो गई भाई। बात समझ में आ गई, तो उसको निकाह नहीं कहेंगे। हां ये जो आदमी किसी औरत से निकाह करता है अकद करता है और वहां मिलके मुता मकसूद होता है इसको निकाह कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, अब लिखिए आगे भाई। यानी निकाह ऐसा आकद है, यानी निकाह ऐसा अकद है जिसके जरिए खावंद का बीवी से नफा उठाना, नफा भाई नून फा और आइन है, खावंद का बीवी से नफा उठाना और सोहबत करना जायज हो जाता है, और सोहबत स्वाद के साथ है, स्वाद हाबा और लंबी ता है दो नुक्तों वाली, और सोहबत करना जायज हो जाता है, और इस आकद के जरिए यही नफा उठाना मकसूद होता है। कसदन की कैद के जरिए बांदी की बैओ शिरा को निकाह की तारीफ से खारिज कर दिया। बांदी को खरीदा जाए तो आका को मिलके मुता हासिल होती है, और आका के लिए उस बांदी से सोहबत जायज हो जाती है, और आका के लिए उस बांदी से सोहबत जायज हो जाती है, मगर बांदी खरीदने के जरिए असल मकसूद मिलके मुता नहीं होती, बल्कि असल मकसूद मिलके रकबी होती है, यानी बांदी की जात का मालिक बनना मकसूद होता है, जात का मालिक बनना मकसूद होता है, और जब इंसान बांदी की जात का मालिक बन जाता है और जब इंसान बांदी की जात का मालिक बन जाता है तो जात की वजह से यानी जात के ताबे होकर मिलके मुता भी हासिल हो जाती है, तो कसदन की कैद के जरिए बांदी के खरीदने को निकाह की तारीफ से निकाल दिया गया। बांदी के खरीदने को निकाह नहीं कहा जाता। बांदी के खरीदने को निकाह नहीं कहा जाता क्योंकि बांदी में मिलके मुता मिलके मुता कसदन हासिल नहीं होती, कसदन हासिल नहीं होती बल्कि तबअन हासिल होती है, बल्कि तबअन हासिल होती है। तबअन ता है दो नुक्तों वाली, बा है, आयन है और अलिफ है भाई, और आयन पर दो जबर डाल देंगे जी, तबअन हासिल होती है। लिख लिया भाई, यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। निकाह के लुगवी माना भी बयान हुआ कि अरबी जुबान में निकाह का क्या माना है, और फिर इस्तिलाह शरीयत में और फुकहा के नजदीक निकाह किसे कहते हैं बतलाया हुआ, अक्दु युफीदु मिल्कल मुताती कसदन, ये तारीफ है निकाह की कि वो अकद जो मिलके मुता का फायदा दे, और ये मिलके मुता उसके जरिए मकसूद हो, कसदन हो ये मिलके मुता, मिलके रकबी मकसूद न हो। आगे अलग सतर में लिखिए भाई, उनवान दे दीजिए, निकाह का हुक्म, निकाह का हुक्म। आगे अलग सतर में लिखिए, निकाह का हुक्म मुख्तलिफ है, निकाह का हुक्म मुख्तलिफ है बएतबारे इख्तिलाफे अहवाल, बएतबारे इख्तिलाफे अहवाल। इबारत समझ में आ रही है कि निकाह का हुक्म मुख्तलिफ है बएतबारे इख्तिलाफे अहवाल, यानी अहवाल के मुख्तलिफ होने के एतबार से इसका हुक्म भी मुख्तलिफ होगा जी। आगे लिखिए, कभी निकाह फर्ज होता है, कभी निकाह फर्ज होता है, कभी वाजिब, कभी वाजिब, कभी सुन्नत, कभी सुन्नत, कभी मकरूह तहरीमी, कभी मकरूह तहरीमी और कभी हराम, और कभी हराम। फुकहाए किराम लिखते हैं, फुकहाए किराम लिखते हैं कि निकाह वाजिब है, कि निकाह वाजिब है इंदा इंदा अत्तवाकान, इंदा अत्तवाकान। अलिफ लाम है, फिर ता है दो नुक्तों वाली और वौ है, ता पर भी जबर पड़ना है, वौ पर भी जबर पड़ना है, और काफ दो नुक्तों वाला है, अलिफ है और नून। इंदा तवाकान भाई, तो क्या लिखा कि फुकहा फरमाते हैं कि निकाह वाजिब है इंदा तवाकान ऐ इंदा लिश्तियाक भाई, ऐ इंदा अलिश्तियाक भाई, यानी जब औरत की रगबत, यानी जब औरत की रगबत और शौक हो, यानी जब औरत की रगबत और शौक हो और जिना में मुबतला होने का खौफ हो, और जिना में मुबतला होने का खौफ हो तो निकाह वाजिब है, तो निकाह वाजिब है। और अगर जिना में मुबतला होने का, और अगर जिना में मुबतला होने का यकीन हो, और अगर जिना में मुबतला होने का यकीन हो तो निकाह फर्ज है, तो निकाह फर्ज है। लेकिन चंद शर्तें हैं, लेकिन चंद शर्तें हैं जिनका बयान आगे आएगा, जिनका बयान आगे आएगा। आगे अलग सतर में लिखिए भाई, हालत एअतेदाल में, हालत एअतेदाल में निकाह सुन्नत मुअक्कदा है, निकाह सुन्नत मुअक्कदा है। मुअक्कदा कैसे लिखते हैं, मीम है फिर वो, वो के ऊपर हमजा डाल दें, और काफ छोटा है और दाल है फिर, और फिर गोलहा सुन्नत मुअक्कदा। जी क्या लिखा, हालत एतदाल में निकाह सुन्नत मुअक्कदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से और नीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौले मुबारक की वजह से और नीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौले मुबारक की वजह से अन्निकाहु मिन सुन्नती, अन्निकाहु मिन सुन्नती, सुन्नती के आखिर में या आएगी भाई, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा, रा गैन और बा है, फमन रगीबा अन सुन्नती, अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लिख लिया, हदीस के अल्फाज दोबारा देख लें, अन निकाहु मिन सुन्नती फमर रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तर्जमा समझ में आ रहा है भाई, अन निकाहु मिन सुन्नती, सुन्नत के साथ या मुतकल्लिम की लग गई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह जो है मेरी सुन्नत में से है। फमर रगीब अन सुन्नती, जिसने मुंह मोड़ा मेरी सुन्नत से, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है, यानी उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है भाई। जी आगे लिखिए, यानी निकाह मेरी सुन्नत है, ये वही तर्जमा मैं लिखवा रहा हूं भाई, यानी निकाह मेरी सुन्नत है, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, उसका मुझसे ताल्लुक नहीं, उसका मुझसे ताल्लुक नहीं। आगे लिखिए, नीज हदीस है अरबाउन मिन सुनन, सीन और फिर नून भाई, मिन सुनन अल मुरसलीन अल हयाउ व तातुरु, तातुर भाई शुरू में ता दो नुक्तों वाली है, फिर आयन है, फिर त्वा है भाई, त्वा और फिर रा है, और शुरू में अलिफ लाम भी है। अच्छा क्या लिखा, अलहयाउ व तातुरु व सिवाक भाई शुरू में अलिफ लाम है, फिर सीन व अलिफ और छोटा काफ है। सिवाक का माना मिसवाक करना भाई, तातुर का माना है खुशबू लगाना, ये आगे मैं तर्जमा भी लिखवा देता हूं। वन निकाहु, जी चौथी चीज भी लिख लिए, वन निकाहु लिख लिया जी। हदीस के अल्फाज दोबारा सुन लीजिए, अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीना, चार चीजें अंबिया की सुन्नतों में से हैं, अलहयाउ हयादार होना, हया रखना, व तातुरु और खुशबू लगाना, व सिवाकु और मिसवाक करना, व निकाहु और निकाह करना। जी आगे आप लिखिए, तर्जमा ही लिख लीजिए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चार चीजें रसूलों की सुन्नत में से हैं, कि चार चीजें रसूलों की सुन्नत में से हैं, हया रखना, खुशबू इस्तेमाल करना, मिसवाक करना, मिसवाक करना और निकाह करना, और निकाह करना। आगे लिखिए, नीस हदीस है ता है दो नुक्तों वाली और फिर जा है भाई राजा, तजवजू जीन के बाद वाव है और फिर अलिफ भी डालना है भाई, ये वाव जमा के बाद अरबी में अलिफ लिखते हैं जी। क्या लिखा, नीस हदीस है तजवजू अलवदूदा, वाव अल अलिफ लाम वाव दाल अलवदूदा। अगला लफ्ज है अलवलूदा, अलिफ लाम वो लाम वो दाल अलवलूद। तजवजू अलवदूदा अलवदूदा फ इन्नी मुकासिरुन। मीम है, काफ छोटा है, अलिफ है, फिर सा है भाई सा और रा है। फइन्नी मुकासिरुन बिकुम अल उमम अलिफ लाम अलिफ और मीम भाई, उम्मत की जमा क्या है, उमम। हदीस के अल्फाज दोबारा देख लीजिए, तजव्वजू अलवदूदा अलवलूदा फइन्नी मुकासिरुन बिकुम अल उमामा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतों से शादी करो जो बहुत मोहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली हों, और बहुत बच्चे जनने वाली हों। बिलाशुबा, ये हदीस का तर्जमा चल रहा है भाई, बिलाशुबा मैं तुम्हारी कसरत के जरिए दीगर उम्मतों पर फखर करूंगा। लिख लिया। आगे लिखिए, नीस हदीस में है मन तजव्वजा ता है दो नुक्तों वाली और फिर जा है वो और जीम। मन तजव्वजा फाकद इस्तकमला, अलिफ है सीन है फिर इस्तकमला, काफ छोटा है, छोटा काफ है, मीम और लाम। इस्तकमला निस्फल ईमानी फल यत्तकी कैसे लिखेंगे, फा है, लाम है, या है, फिर ता है दो नुक्तों वाली और फिर काफ है, काफ के नीचे जेर आएगा भाई, यानी साथ लिखनी। फल यत्तकी अल्लाह, लिख लिया, फल यत्तकी अल्लाह फी अन्निस्फी अल बाकी जी। अब इस हदीस के अल्फाज दोबारा देख लीजिए, मन तजव्वजा फकद इस्तकमला निस्फल ईमानी फलयत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी। तर्जमा मैं अभी आगे लिखवाता हूं, पहले यहां समझ लें। मन तजव्वजा, जिस शख्स ने निकाह कर लिया, शादी कर ली, फकदिस तक मला निस्फल ईमानी, तो उसने आधे ईमान को पूरा कर लिया, यानी ईमान के आधे हिस्से को उसने पूरा कर लिया, यानी यूं कहो आधे ईमान को उसने अपने महफूज कर लिया, बचा लिया। और क्या है, फलियत तकिल्लाह, और उसको अल्लाह से डरना चाहिए, फिर निस्फिल बाकी, बाकी के आधे में, आधा ईमान उसका क्या हुआ पूरा, और बाकी आधे में अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के अहकाम पर चलना चाहिए। भाई आगे लिखिए भाई तर्जमा, जिसने निकाह कर लिया, जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान बचा लिया, उसने आधा ईमान बचा लिया, फिर बाकी आधे के बचाने में, फिर बाकी आधे के बचाने में अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह से डरता रहे। आगे अलग सतर लिखिए भाई, इमाम शाफई रहिमहुल्लाह, इमाम शाफई रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का, और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का क्या लिखा, इमाम शाफई रहिमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का इस मसले में इख्तिलाफ है, इस मसले में इख्तिलाफ है कि निकाह करना बेहतर है, कि निकाह करना बेहतर है या निकाह के बगैर जिंदगी गुजारना, या निकाह के बगैर जिंदगी गुजारना। आगे लिखिए, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तजव्वुज, के तजव्वुज यानी शादी बेहतर है, यानी शादी बेहतर है और सुन्नते मुअक्कदा है, और सुन्नते मुअक्कदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से और मज़कूरा अहादीस वगैरह की वजह से, और मज़कूरा अहादीस वगैरह की वजह से, लेकिन इमाम शाफई रहिमहुल्लाह, लेकिन इमाम शाफई रहिमहुल्लाह तर्क तजव्वुज को, तर्क तजव्वुज, तर्क, तर्क का क्या माना है, छोड़ना, ता है रा और छोटा काफ, लेकिन इमाम शाफी रहमुल्ला तर्क तजव्वुज यानी शादी छोड़ने को बेहतर करार देते हैं, यानी शादी छोड़ने को बेहतर करार देते हैं और फरमाते हैं, और फरमाते हैं कि निकाह की वजह से, कि निकाह की वजह से उमूमन इंसान, के निकाह की वजह से उमूमन इंसान बड़ी मुसीबतों में मुबतला हो जाता है, बड़ी मुसीबतों में मुबतला हो जाता है, नीज निकाह की वजह से, नीज निकाह की वजह से इंसान को, इंसान को इबादत का मौका कम मिलता है, इंसान को इबादत का मौका कम मिलता है, क्योंकि वो, क्योंकि वो अहलो आयाल, अहलो आयाल की, अहलो आयाल की जरूरियात अहलो अयाल की जरूरियात पूरी करने में लगा रहता है, पूरी करने में लगा रहता है। यहां तक बात समझ में आई भाई? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह करना, एक है निकाह करना और एक है बगैर निकाह के जिंदगी गुजारना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह करना अफजल है, बेहतर है कि इंसान क्या करे, निकाह करे भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह को छोड़ना और निकाह के बगैर जिंदगी गुजारना बेहतर है भाई। बात समझ में आ रही? तो इमाम साहब की दलील कि हुजूर अलैहि सलाम का अमल है और नीज या हदीस में ऊपर जिक्र हुई उनकी वजह से, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि निकाह की वजह से इंसान को अल्लाह की इबादत का मौका कम मिलता है क्योंकि वह अहले आयाल के जरूरियात पूरी करने में मशगूल रहता है। नीज निकाह की वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतें इंसान पर आती हैं भाई, बाद औकात उनके लिए खर्चे पूरे करना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, और इस तरह और भी बास तकालीफ आ जाती हैं जी। आगे लिखिए अलग सतर, अलग सतर। बहरहाल बहरहाल इंदल अहनाफ, बहरहाल इंदल अहनाफ निकाह फर्ज होता है, निकाह फर्ज होता है या वाजिब, या वाजिब या सुन्नत, या सुन्नत, लेकिन चंद शर्तें हैं, लेकिन चंद शर्तें हैं। आगे उन्वान दीजिए शराइते निकाह, शराइते निकाह यानी निकाह की शर्तें भाई। आगे लिखिए अलग सतर में, अव्वल ये है, अव्वल ये है कि मालिके महर हो, कि मालिके महर हो। आजीलन, अलिफ है और उस पर मद डालें भाई, आजीलन, अलिफ मद आ जीम और लाम अलिफ है भाई, लाम अलिफ, लाम के ऊपर दो जबरें डाल दें, आजीलन या आजीलन, या आजीलन, आयन अलिफ है भाई, आयन अलिफ जीम और लाम अलिफ, यानी फिलहाल महर, यानी फिलहाल महर उसके पास मौजूद हो, उसके पास मौजूद हो, या महर कमाकर, या महर कमाकर अदा करने के काबिल हो, अदा करने के काबिल हो। इबारत समझ में आ रही है? फिर देखें अव्वल, पहली शर्त क्या है कि वो निकाह करने वाला महर का मालिक हो, महर अदा कर सके बीवी को भाई, और चाहे वो, ये माना नहीं कि उस पूरा महर उसके पास होना चाहिए, बस महर का मालिक हो, चाहे आजीलन या आजीलन है। आजीलन का क्या माना? उजलत से है, जल्दी, यानी फिलहाल उसके पास महर मौजूद हो, या आजीलन अजल से है मुद्दत भाई, यानी कमा कर अदा करने के काबिल हो भाई। बात समझ में आ गई? ये ना हो कि कमाने के काबिल भी ना हो, माजूर वगैरह है या पाहज है, कमाने की भी सूरत नहीं है, माल है भी नहीं और कमा भी नहीं सकता भाई। तो मालिक महर हो आजीलन, यानी कमा कर ला सके, या आजीलन फिलहाल ही मालिक हो भाई। आगे नंबर दो, मालिक नफका हो, मालिक नफका हो, यानी बीवी को, बीवी को खिला पिला सके, खिला पिला सके, या नफका कमाकर खिलाने के काबिल हो, या नफका कमाकर खिलाने के काबिल हो। समझ में आया भाई, नफके में खाना खिलाना पिलाना और इसी तरह लिबास भी इसके अंदर आ जाएगा, उसकी जरूरियात पूरी करे भाई। आगे लिखिए नंबर तीन, खौफे जौर, जीम वाव रा, खौफे जौर व जुल्म, खौफे जौर व जुल्म न हो। जौर का माना जुल्म है भाई, इसलिए मैंने दोनों लफ्ज लिखवा दिए भाई। क्या लिखा? नंबर तीन, खौफे जौर व जुल्म न हो, यानी यह खौफ न हो कि मैं बीवी पर जुल्म व सितम करूंगा। लिखिए भाई, यानी यह खौफ न हो कि मैं बीवी पर जुल्म व सितम करूंगा। नंबर चार, कादिर अलस सकन भी हो, कादिर काफ है दो नुक्तों वाला, कादिर अला असकन, अलिफ लाम सीन और काफ छोटा है और नून, कादिर अलस सकन भी हो, यानी बीवी के लिए रिहाइश का इंतजाम कर सके, यानी बीवी के लिए रिहाइश का इंतजाम कर सके। उलमा लिखते हैं, उलमा लिखते हैं कि अगर मालिक महरो नफका न हो, कि अगर मालिक महरो नफका न हो तो निकाह मकरूह तहरीमी है, तो निकाह मकरूह तहरीमी है, और अगर तबीयत जालिमाना है, और अगर तबीयत जालिमाना है और बीवी पर, और बीवी पर जुल्म सितम करने का खौफ है, और बीवी पर जुल्म सितम करने का खौफ है, तो ऐसे शख्स के लिए भी, तो ऐसे शख्स के लिए भी निकाह मकरूह तहरीमी है, तो ऐसे शख्स के लिए भी निकाह मकरूह तहरीमी है। और अगर जुल्म व सितम करने का यकीन हो, और अगर जुल्म व सितम करने का यकीन हो, तो फिर निकाह हराम है, तो फिर निकाह हराम है। आगे अलग सतर लिखिए, आकदे निकाह के सही होने के लिए, आकदे निकाह के सही होने के लिए चंद शर्तें हैं, आकदे निकाह के सही होने के लिए चंद शर्तें हैं। आगे लिखिए, हुजूर शाहिदैन, हुजूर हा है, ज़ाद है और वौरा, हुजूर शाहिदैन, शाहिदैन ये तस्निया है शाहिद की, गवाह को कहते हैं, हुर्रैन, हुर्रैन हुर आजाद आदमी को कहते हैं, तो ये उसकी तस्निया है, मुकल्लफैन, मुकल्लफ भाई आकिल बालिग आदमी जो है वो है मुकल्लफ भाई, अहकाम शरीयत उस पर लागू होते हैं। क्या लिखा? हुजूरु शाहिदैनी हुर्रैनी मुकल्लफैनी सामीआइनी, सामीआइनी कौलहुमा, कौलहुमा फाहिमैनी, फाहिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। फिर देख लें इबारत, हुजूर शाहिदैनी हुर्रैनी मुकल्लफैनी सामीआइनी कौलहुमा फाहिमैनी मुस्लिमैनी, ये शर्तें हैं फिर ही निकाह होगा भाई। पहले समझ लो इसको, हुजूर शाहिदैनी निकाह के वक्त दो गवाह होने चाहिए, दो गवाह, दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें हों, और हुर्रैनी वो गवाह कैसे होने चाहिए, आजाद हों, गुलाम या बांदी ना हो भाई, मुकल्लफैनी ये वो दोनों गवाह क्या हों, मुकल्लफ यानी आकिल बालिग हों, मजनून गवाह है तो उसे निकाह मुनाकिद नहीं होगा, दो मजनून बिठाए और निकाह किसी औरत से कर लिया नहीं भाई, या बच्चे बिठा लिए नाबालिग बच्चे उनके सामने भी निकाह करोगे निकाह मुनाकिद नहीं होगा, दो गवाह होने चाहिए भाई आकिल बालिग और जी और मुकल्लफ। अच्छा मुकल्लफैन का क्या माना हुआ, आकिल और बालिग हों, और सामिअइन क़ौलहुमा वो उन दोनों के कौल को सुने भाई, वो जो गवाह हैं वो इजाब और कबूल को अपने कानों से सुने, तवज्जो है, और फाहिमैनी वो उस इजाब और कबूल को समझते भी हों, ये ना हो इजाब और कबूल किसी और जुबान में हो रहा है, इनको वो जुबान ही नहीं आती, अब उनको क्या पता है ये क्या बात आपस में हो रही है, इजाब और कबूल हुआ या नहीं हुआ इनको क्या पता है भाई, तो उन सामिअइन क़ौलहुमा उन दोनों के इजाब कबूल को उन दोनों के कौल को भी सुने, फाहिमैनी फहम का क्या माना है समझना, और उसको समझें भी कि ये क्या बात हो रही है इजाब कबूल हो रहा है, और नीज मुस्लिमैनी दो गवाह भी कैसे होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, अगर सिर्फ काफिरों की मौजूदगी में चाहे 10 काफिर हों उनकी मौजूदगी में निकाह करेंगे निकाह मुनाकिद नहीं होगा भाई, तो ये निकाह की शर्तों में से है दो गवाहों का होना, और आप जानते हैं कि शर्त है तो मशरूत भी है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं, जैसे वजू है तो नमाज होगी, वजू नहीं तो नमाज भी नहीं, तो निकाह के अंदर दो गवाहों का होना जरूरी है भाई जी। आगे लिखिए भाई, यानी दो गवाह आकद के वक्त मौजूद हों, यानी दो गवाह आकद के वक्त मौजूद हों और वो आजाद हों, और वो आजाद हों, मुकल्लफ हों, मुकल्लफ हों यानी आकिल बालिग हों, यानी आकिल बालिग हों और अपने कानों से ईजाब व कबूल को सुन लें, और अपने कानों से ईजाब और कबूल को सुन लें, और इस ईजाब और कबूल का माना, और इस ईजाब और कबूल का माना उन्हें समझ आ रहा हो, उन्हें समझ आ रहा हो, और वो दोनों गवाह मुसलमान हों, और वो दोनों गवाह मुसलमान हों, या गवाह एक मर्द और दो औरतें हों, या गवाह एक मर्द और दो औरतें हों, और उनमें मज़कूरा तमाम शराइत पाई जाएं, और उनमें मज़कूरा तमाम शराइत पाई जाएं। बात समझ में आ रही है, दो गवाह होने चाहिए मर्द भाई, और उनमें शर्तें जिक्र हो गई, या दो मर्द नहीं है तो फिर कम से कम एक मर्द और दो औरतें हों, और इन तीनों में भी वही सारी शर्तें होनी चाहिए, सिर्फ औरतों की मौजूदगी में निकाह नहीं हो सकता भाई, चाहे 20 औरतें बैठी हैं और मर्द कोई भी नहीं है, इसके सामने वो मियां बीवी ईजाब व कबूल करते हैं, इससे निकाह मुनाकिद नहीं होगा भाई। बात समझ में आ गई, आगे लिखिए भाई अलग सतर, तो शाहिदैन की 5 शर्तें हुई, तो शाहिदैन की 5 शर्तें हुई, गवाहों की कितनी शर्तें हुई, 5 शर्तें जिक्र हो गई, आजाद होने चाहिए, मुकल्लफ होने चाहिए, और कौल को सुनने वाले हों, और समझने वाले हों, और मुसलमान हों भाई जी। तो क्या लिखा, तो शाहिदैन की 5 शर्तें हुई, बाज उलमा ने 6ठी शर्त का इजाफा भी किया है, बाज उलमा ने 6ठी शर्त का इजाफा भी किया है कि दोनों गवाह इंसान हों, कि दोनों गवाह इंसान हों। लिहाजा सिर्फ जिन्नात की मौजूदगी में, लिहाजा सिर्फ जिन्नात की मौजूदगी में निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। बाज ने एक और शर्त भी लगाई, बाज ने एक और शर्त भी लगाई कि निकाह अपनी ही जिन्स के साथ होना चाहिए, कि निकाह अपनी ही जिन्स के साथ होना चाहिए, लिहाजा जिन्निया के साथ, लिहाजा जिन्निया के साथ इंसान का निकाह जायज नहीं, लिहाजा जिन्निया के साथ इंसान का निकाह जायज नहीं। लिख लिया जी, आगे अलग सतर उन्वान है भाई, निकाह की मसलहतें और आफात। उन्वान है भाई, उन्वान निकाह की मसलहतें और आफात जी, अलग सतर में लिखिए। इमाम गजाली रहिमहुल्ला ने, इमाम गजाली रहिमहुल्ला ने निकाह की कुछ आफात भी जिक्र की हैं, निकाह की कुछ आफात भी जिक्र की हैं और कुछ फवाइद भी, और कुछ फवाइद भी। आगे अलग सतर में लिखिए, फवाइद पांच हैं, फवाइद पांच हैं। नंबर एक तहसील औलाद, नंबर एक तहसील औलाद। नंबर दो कसर शहवत, कसर काफ छोटा है, सीन है और रा है, कसर का माना होता है तोड़ना, तोड़ना। कसर शहवत यानी शहवत टूट जाएगी, शहवत का इलाज हो जाएगा जी। क्या लिखा? नंबर एक तहसील औलाद, नंबर दो कसर शहवत यानी शहवत का इलाज। लिखिए भाई, यानी शहवत का इलाज। नंबर तीन तदबीर मंजिल, तदबीर मंजिल। मंजिल किसे कहते हैं अरबी जुबान में? घर को कहते हैं, घर। तदबीर मंजिल भाई, घर की तदबीर करनी पड़ेगी, घर चलाना पड़ेगा। क्या लिखा? तदबीर मंजिल यानी घर का इंतजाम संभालना और उसे चलाना, यानी घर का इंतजाम व इंसराम, यानी घर का इंतजाम व इंसराम, इंसराम स्वाद के साथ है, यानी घर का इंतजाम व इंसराम संभालना और उसे चलाना, और उसे चलाना। नंबर चार कसरत आशीरा, कसरत आशीरा यानी खानदान का बढ़ जाना, यानी खानदान का बढ़ जाना। क्योंकि नसबी रिश्तों के साथ साथ, क्योंकि नसबी, नसब सीन के साथ है, नून सीन बाया, क्योंकि नसबी रिश्तों के साथ साथ अब नए ससुराली रिश्ते भी बन गए, अब नए ससुराली रिश्ते भी बन गए। नंबर पांच जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिन नफ्स बी अदाई हुकूक हिन्ना, बी अदाई हुकूक हिन्ना। तर्जमा समझ में आ रहा है? जिहाद बिन नफ्स, नफ्स के साथ जिहाद करना पड़ेगा, भी अदा ए हुकूक हिन्ना, उन औरतों के हुकूक अदा करते हुए जी। आगे लिखिए, क्या लिखा? जिहादुम बिन नफ्सी भी अदा हुकूक हिन्ना, यानी जिहाद बिन नफ्स का ज्यादा मौका मिलेगा, यानी जिहाद बिन नफ्स का ज्यादा मौका मिलेगा कि अब अहले खाना के हुकूक भी अदा करने पड़ेंगे, कि अब अहले खाना के हुकूक भी अदा करने पड़ेंगे, कि अब अहले खाना के हुकूक भी अदा करने पड़ेंगे। आगे अलग सतर लिखिए, आफात तीन हैं, आफात तीन हैं। नंबर एक, आजज अन तलब अल हलाली, आजज आइन जीम ज़ा, आजज अन तलब अल हलाली, अन तलब अल हलाली, यानी अहले खाना की जरूरियात, यानी अहले खाना की जरूरियात पूरी करने के लिए, पूरी करने के लिए तलब हलाल की कोशिश, तलब हलाल की कोशिश इंसान को आजिज कर देती है, इंसान को आजिज कर देती है, और वो फक्रो फाका में, और वो फक्रो फाका में मुबतला हो जाता है, और वो फक्रो फाका में मुबतला हो जाता है। नंबर दो, कुसूर अन, कुसूर काफ दो नुक्तों वाला है और स्वाद है वो रा, कुसूर अन अदाई हुकूकी हिन्ना, अन अदाई हुकूकी हिन्ना, यानी इंसान अपने अहले खाना के, यानी इंसान अपने अहले खाना के हुकूक सही तौर पर, हुकूक सही तौर पर अदा नहीं कर पाता, अदा नहीं कर पाता, और नतीजे के तौर पर, और नतीजे के तौर पर आखिरत में, आखिरत में आजीम मुआखजे का, आखिरत में आजीम मुआखजे का मुस्तहिक बन जाता है, मुस्तहिक बन जाता है। नंबर तीन, अहले खाना व औलाद, अहले खाना व औलाद मानिअ बनते हैं, मीम अलिफ नून आइन, मानिअ बनते हैं इबादत से, मानिअ बनते हैं इबादत से, यानी इंसान अहलो आयाल, यानी इंसान अहलो आयाल और औलाद की जरूरियात, और औलाद की जरूरियात पूरी करने में, पूरी करने में लगा रहता है, पूरी करने में लगा रहता है, और इस तरह उसे, और इस तरह उसे अल्लाह ताला की इबादत करने का, अल्लाह ताला की इबादत करने का मौका कम मिलता है, मौका कम मिलता है। आगे अलग सतर, अलग सतर भाई, बहर हाल निकाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, बहर हाल निकाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, इसमें दुनिया के साथ साथ, इसमें दुनिया के साथ साथ दीन का भी बड़ा फायदा है, दीन का भी बड़ा फायदा है। आदमी गुनाह से बचता है, आदमी गुनाह से बचता है। दिल एक तरफ मुतवज्जे हो जाता है, दिल एक तरफ मुतवज्जे हो जाता है और मुतमईन हो जाता है, और मुतमईन हो जाता है। फायदा का फायदा, फायदा का फायदा और सवाब का सवाब, और सवाब का सवाब। मियां बीवी का, मियां बीवी का प्यार और मोहब्बत की बातें करना, प्यार और मोहब्बत की बातें करना, हंसी दिल लगी करना, हंसी दिल लगी करना नफल नमाजों से बेहतर है, नफल नमाजों से बेहतर है। देखो अजीम अजर अल्लाह नसीब फरमाते हैं, बीवी के साथ हंसी मजाक करना उस पर भी अल्लाह अजर व सवाब नसीब फरमाते हैं कि यह शख्स हराम जगहों को छोड़कर कहां पर मसरूफ है, हलाल जगह के अंदर, जो वो जगह जो अल्लाह ने इसके लिए हलाल की है वहां मसरूफ है। जी आगे लिखिए, हदीस शरीफ में है, हदीस शरीफ में है कि अहलो आयाल वाले शख्स की, कि अहलो आयाल वाले शख्स की दो रकातें बगैर अहलो आयाल वाले शख्स की, बगैर अहलो आयाल वाले शख्स की 70 रकातों से बेहतर हैं, 70 रकातों से बेहतर हैं। और दूसरी हदीस में, और दूसरी हदीस में बजाय 70 के, बजाय 70 के 82 का आदद जिक्र हुआ है, 82 का आदद जिक्र हुआ है कि अहलो आयाल वाले शख्स की, कि अहलो आयाल वाले शख्स की दो रकातें बगैर अहलो आयाल वाले शख्स की, बगैर अहलो आयाल वाले शख्स की 82 रकातों से बेहतर हैं, 82 रकातों से बेहतर हैं। लिख लिया, बहस मुकम्मल हुई भाई। भाई ये वो बहस है जो वालिद साहिब रहमहुल्लाह शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह वो दरस तिरमिजी में इस तरह की चंद बहसें लिखवाते भाई। तो ये वो कीमती निकात हैं जो उन्होंने तलबा को लिखवाए, और इसमें फिर मैंने कुछ इजाफे वगैरह भी मजीद कर दिए, शुरू में तफसील के साथ एक एक चीज की वजाहत कर दी। तो यहां ये नहायत कीमती बहस है, इसको याद रखिएगा। और देखो निकाह की नियमत का अंदाजा करें कि इसकी वजह से एक शख्स दो रकतें पढ़ता है अहलो आयाल वाला, गैर अहलो आयाल वाले शख्स की 70 बल्कि 82 रकतों से वो अफजल हैं। दो रकतों पे कितना वक्त लगता है, और दूसरी तरफ 82 रकतें या 70 रकतें देखें, वो शायद जोहर से असर तक भी वो पढ़ता रहे तो मुश्किल पूरी कर सके। तो वो दो रकतें अहलो आयाल वाले शख्स की अफजल हैं बगैर अहलो आयाल वाले शख्स की 70 या 82 रकतों से। हां यहां आपके जहन में एक शुबा ये भी आएगा कि एक हदीस में आया 70 से अफजल है और दूसरी में क्या आया 82 से अफजल है, ये तो बज़ाहिर तआरुज़ लग रहा है भाई। बात समझ में आ रही है, एक में 70 का आदद है, दूसरी में 82 का आदद है। तो याद रखो, बाज औकात बज़ाहिर अहादीस में कोई शुबा और एतराज आता है, लेकिन उलमा फुकहा उसकी ऐसी वजाहत करते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है, सारा इश्काल खत्म हो जाता है। तो उलमा फरमाते हैं कि 70 रकातों से अफजल है, यह उस शख्स के लिए है जो बीवी वगैरह के हुकूक और उनकी जरूरियात पूरी करता है, अच्छे तरीके से उनके हुकूक अदा करता है, और 82 उसके लिए है जो उन हुकूक से बढ़कर और भी ज्यादा उनके साथ अच्छाई और नेकी करता है। तो उसके लिए सवाब कितना हो गया, 70 के बजाय 82 रकतों से भी जायद उसको सवाब मिलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।